दुनिया क्या है, उसकी जरूरत क्या है, दुनिया की शिकायत क्या है, और उससे जो नतज है वो ये कि ये जो सोच है, जो फिक्र है, वो असल में उसका आगाज हुआ यूरोप से और वो इस वक्त ग्लोबलाइज है ये फिक्र, और दुनिया में जो है वो हर मार्केट फिक्र के अंदर जो है वो मुब्तला है और ये डोमिनेटिंग फिक्र है इस वक्त दुनिया से। और ये हमने समझा था कि इस फिक्र का आगाज यूरोप से हुआ, एक्सटेंड ग्लोबल है और हर मुल्क में खसूस वो तबका जो माली हैसियत से और इकतदार की हैसियत से बाला तर तबका है वो पूरी तरह फिक्र की रंग में रंग चुके। और आपको अकबर इलाहाबादी साहब का वो नशा सुनाए गए थे, मैंने देखा है कि सेशन में उलझ कर रखकर तुमने अस्ताब की इज्जत के कफन बेच दी, नई तहजीब की बेनूर बहारों के अवर अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दी। आपको नजर आएगा ये हर जगह यही मामला जो है वो है, इस मगरबी तहजीब की जगह जो ने जो है वो इतना मुतासर किया लोगों को कि बगैर नतज देखे जो है उसे गले लगा रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि पिछली दफ़ा हमने समझा था कि कितनी हलाकत फैली इस तहजीब की, और शाही ने कहा है क्या तुमने देखा नहीं मगरब का तहजीबी निज़ाम चेहरा रोशन अंदरून चंकेत से तारीख तक, वो तारीखी तक नज़र नहीं है, जो बज़ाहिर जो खूबसूरती नज़र आ रही है उस पर जो है लोग लिखते हैं उसकी तरफ फाइल होते हैं। बहरहाल ये हमने समझा था, फिर अगला था बुनियाद इसी जो पहला पेज है इसमें चार चीज़ें थी, पहला ये कि आवाज़ यूरोप, दूसरा ये कि एक्सटेंड ग्लोबल, और तीसरी चीज़ ये थी कि इसके अलावा खसूसन अपर थिएटर है मुल्क में इस रंग में रह चुके हैं, और चौथी और अहम तरीन चीज़ इसने हमने समझी थी कि खसूसन वो लोग जो इसकी मुखालफत में खड़े हुए हैं वो भी इससे बहुत हद तक मुतासर हैं, और उनका अगर गहराई से मुताला किया जाए देखा जाए तो फिर अंदाज़ा होता है कि वो खुद मगरबी तहजीब से मुतासर हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि उसके खिलाफ जो है आवाज़ लगा रहे हैं और मुखालफत में खड़े हैं। चौरीश कश्मीरी साहब के कुछ अशार हैं, वो कहते हैं बहुत करीब से देखा है रहनुमाओं को, बहुत करीब से कुछ राज पाए हैं मैं, कहूँ तो गर्दिश लैलो नहा रुक जाए वो राज जिससे कि कुछ जब्त खाए मैं, तो जब बड़े बड़े लोगों के पास आदमी जाते हैं कुछ करीब से देखता है तो एहसास होता है कि नहीं मामला कुछ और है, पहले कुछ और है, तो ये जो है वो बात नजर आई यहाँ। और डॉक्टर साहब अपनी तहरीर में कह रहे हैं कि खसूसर वो तहरीकें जो बड़े जोर व शोर से इसके खिलाफ उठती थी वो भी करीब से देखो तो वो इस तहजीब के मुताबिक। फिर अगला पेज का बुनियादी नुक्ते नज़र, और इसे हमने समझा था कि ये तहजीब जो है वो किन ग्राउंड पे बनी हुई है, मगरबी तहजीब के अज्जाए तरकीबी क्या है, किन चीज़ों से ये मिलकर बनी, तो एक बात सीधी सीधी समझ में आई थी कि ये तहजीब वो है जो कहती है कि जो शह हवा से समझा में नहीं आ रही, जो महसूस नहीं हो रही तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और सारी तवज्जो का इतिकाज कहाँ पर है, उन अशिया के ऊपर, मामला के ऊपर जो अकल में आने वाले हैं, जो महसूस किए जाने वाले हैं। चराजे जो है वो फलसफे में तो सीधा सीधा कह दिया गया कि कोई माशाल्लाह ना खुदा है ना रूह है ना आखर, और ये चीज़ें गैर महसूस हैं, और इसके पीछे पढ़ने वाले जो है वो कोई अकल के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ये अपनी बात नहीं है कि आदमी इस तरह की गैर महसूस चीज़ों को माने, जबकि साइंस की जबान में हमने समझा कि इसका खुल के इनकार नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि हम ना इसका इतराज कर सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं, हो सकता है खुदा हो सकता ना हो हमें पता नहीं, लेकिन ये इसका नतीजा क्या निकला, तवज्जा जो है वो खुदा की जगह जो है वो कायनात की तरफ फिर गई, और आदमी की तवज्जा रूह से हटकर महज जिस्म तक महदूद हो गई, और इसी तरह उखरवी जिंदगी की तरफ से जो है वो तवज्जा हटकर सारी तवज्जा दुनिया की जिंदगी की तरफ मजबूर हो गई, तो कायनात मादा या जिस्म और इसी तरह दुनियावी जिंदगी जो है वो असल इंसानी सोच और फिक्र का मरकज बन गई, और खुदा उखरवी जिंदगी और रूह इस पर से तवज्जा बिल्कुल हट गई, तो ये जो है मामला हमने पढ़ा था। और ये भी हमने समझा था कि इसकी तीन बुनियादें हैं मगरबी फिक्र की, और वो क्या था, सियासत में जो है वो अवामी हाकिमियत, वो कहते हैं जो हम चाहेंगे वो कानून बनाएंगे, और मईशत में सूद सूद और जुआ, और माशरत में आज़ादी, वो क्योंकि इंसान जो है जो सूद से गाफिल है, अपनी हकीकत से गाफिल है, खुदा से गाफिल है, तो लिबास और महरम ना महरम, हलाल अनाम ये सब یہ حلال حرام وغیرہ سب اسے تکلف نظر آتا ہے.
وہ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں, جانور کہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم بھی دیکھیں تو جانوروں کی سطح پر بلکہ اس سے بھی نیچے جو انسان جیسے.
اور میں بتایا تھا آپ کو کہ اب بنیادی ضروریات تو پوری ہو گئی ہے,
مغرب کو آپ دیکھیں
تو وہاں ہیڈنزم کہلاتا ہے,
خوبصورتی اور لذت, بس یہ دو چیزیں جس کے لیے زندگی چلتی ہے.
ہر چیز میں حسن چاہیے, ہر چیز میں لذت چاہیے.
آئے اب اس کے بعد آگے کا یہ مختصر جو ہے ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب جن لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے رجوع الی القرآن, تو ایک بڑا اچھا جو ہے مقالہ ہے اب تک جو بات ہوئی ہے اس پر وہ لوگ اسے پڑھ سکیں گے, باقی لوگ دیکھیں گے. یوسف سلیم کسی صاحب کا جب یہ مضمون ڈاکٹر صاحب نے لکھا 1967 میں اور یہ کتاب میں چھپا, انہوں نے بھی پڑھا تو انہوں نے اسے ایک خط لکھا. اور پروفیسر یوسف سلیم سکسٹی صاحب جو ہے پیج نمبر ہے 61, پیج نمبر 61 جن کے پاس کتابیں اس میں نہیں ہیں وہ صرف سن لیں, اس میں سے ٹیسٹ نہیں ہوگا. لیکن ذرا جو ہے یہ کافی انہوں نے وضاحت کر دی اس مغربی فکر کی کہ یہ کیسے اس کا لکھا ہوا, کیسے یہ بنی. تو پروفیسر سلیم سکسٹی صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے پہلے سمجھی تھی. ایک چیز یہ سمجھی تھی کہ وہ بہت جو ہے صاحب شخصیت تھی اور خصوصاً تقابل ادیان اور خصوصاً ہندوازم پر جو ہے ہندو کی کہنے تھی, اور ویسے ہی تقابل ادیان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, خصوصاً جو ہے وہ گہرا کرسچینٹی اور ہندوازم پہ خاص نظر تھی. اور اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے ایک لمبا عرصہ گزارا اور ان کی جو ہے وہ کوشش کی انہوں نے تحریر کی, تو اس حیثیت سے زیادہ وہ پہچانے جاتے ہیں. بہرحال اب وہ جو ہے اس کے جواب میں لکھتے ہیں, اب دو تین صفحے اس کے پڑھ لیتے ہیں, ریویژن بھی اچھا ہو جائے گا, ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی. لکھتے ہیں برادرہ میں عزیز, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثال ماہ جون 67 میں جو خیالات آپ نے تحتے تذکرہ و تبصرہ سپرد قلم کیے ہیں ان کو پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور آپ کے لیے تہ دل سے دعا بھی نکلی. آپ نے عصر حاضر پر جو تبصرہ کیا وہ صحیح ہے. اہل مغرب کا ملحدانہ زاویہ نگاہ, ملحدانہ کسے کہتے ہیں, ٹیڑھا ہوا ہوا زاویہ نگاہ, اینگل آف ویو بالکل ہی ٹیڑھا ہوا ہوا ہے. اس زاویہ نگاہ کا اہل مغرب کے ذہنوں پر تسلط, اب یہی مغربی فکر جو ہے وہ مشرقی لوگوں کے ذہنوں میں, اس کے مضر نتائج, اس ناگوار صورتحال سے رہائی کی تجویز اور اصلاح حال کی راہ. ان موبائل پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلا شبہ آپ کی اساتذہ فکر اور رائے, معاملہ فہمی, ظرف نگاہی, ظرف معنی ہوتا ہے گہرا امیر, اور حقائق رسی کا واضح ثبوت ہے. میں آپ کو سب سے دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں بھوڑوں کی بھی سمجھ عطا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی دینی اصلاح کی کسی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خدمت دین کی بے شرمی توفیق بھی عطا فرمائے. کیونکہ ویسے ہم نے جب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے سفیدی داڑھی میں دیکھا, تو پتہ نہیں یہ جوانی کون سی اس کی ہوتی ہے. ہاں جتنا پرانا بھی یہ چیز کا بھی آپ کو دیکھیں گے داڑھی سفید ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بھی نصف صدی تک یعنی 1917 سے اس وقت تک 67 تک انہیں دو تین مسائل پر غور کیا, یعنی مغرب میں الحاد اور معصیت کے فروغ کے اسباب کیا ہیں, کیوں یہ الحاد پیدا ہو گیا مغربی تہذیب میں, اور مادہ پرستی اتنا کیوں جو ہے اس میں چلے گئے. ان مغربی افکار کا اقوام مسجد کے ذہنوں پر تسلط اور اس تسلط سے رہائی کی صورت جس سے وہ غور و فکر کرتے رہے. مجھے آپ کا مضمون پڑھ کر جو غیر معمولی مسرت حاصل ہوئی, اس کی خاص وجہ یہ کہ میرے نتائج افکار اور آپ کے نتائج افکار میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی. میری رائے میں آپ کی خدمت میں حیثیت تحسین پیش کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ کے بعض صحابہ کو مبران اور مدلل کر دوں, بعض حقائق کی وضاحت کر دوں, بعض صداقتوں کو مؤکد کر دوں, اور بعض تجاویز کو مشید کر دوں. موقت اسم المفعول ہے, تاکید کیا گیا اس کے معنی, مشید ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کر دینا اور مضبوط کر دینا. بہرحال اس سے موٹی موٹی باتیں دیکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آج کا دور بجا طور پر مغربی فکر اور فلسفے کی بالادستی کا دور ہے اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے پوری گلوبلائز ہے,
تو اس سے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ تذکرہ بالکل صحیح ہے. چنانچہ میری اور علامہ اقبال دونوں کے ماننی مرشد لسان الحق اکبر الہ آبادی نے آج سے 50 سال پہلے انہیں حقائق کو اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں یوں بیان کر دیا تھا. مرزا غریب جو میں ان کی کتاب رسی بدھو اکڑ رہے ہیں صاحب نے یہ کہا. دراصل میں اس زمانے کے پرانے اہل علم جو تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ان کا جو علم تھا اس کے جو ذخائر تھے وہ ردی کے بھاؤ جو ہے وہ بکھرے تھے, ان کی کوئی جو ہے قدردانی نہیں تھی. اور بدھو جو عام لوگ تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اکڑ رہے ہیں کہ صاحب نے یہ کہا. صاحب کسی کون کہلاتے ہیں؟ انگریز. تو انگریز نے جو بات کہہ دی اس کی بہت اہم ہے. اب وہ چاہے خود میرا جاہل ہے لیکن کیونکہ انگریز نے کہا ہے تو اب وہ اکڑ رہا ہے کہ یہی چاہیے. اسی طرح آج تک وہ کیفیت ہے جو دوسرے شہر میں وہ بیان کر رہے ہیں. چیز وہ ہے بنی جو یورپ ہے, بات وہ ہے جو پانی آئے نہیں سکتے. تو جو چیز یورپ کا ٹیگ لگی ہوئی آ رہی ہے اس کی بدل قیمت ہمارے یہاں بھی ہے. اور حد تو یہ ہے کہ مجھے تو واسطہ پڑا بادامو میں بادام لینے آپ جائیں, جو سب سے کم تر بادام ہے وہ لوکل کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے لے لو, اور جو سب سے اچھا ہے وہ کون سا کہلاتا ہے؟ امریکن بادام. وہ امریکہ میں تو ادھر ہی کہیں پیدا ہوا ہے لیکن نام امریکہ رکھا ہے. تو یہ ہماری فطرت ہی یہ بن گئی, ہماری عادت یہ بنتی ہے کہ ان قوموں سے مروب ہیں تو جو بیسٹ کوالٹی چیز ہے وہ ان کے نام سے جو ہے لکھی جائے. وہ تو عام ہی تھا کہ کپڑا یہیں پر تورنگی کی لانڈی کی کسی لوم میں بن رہا ہے لیکن تھپا کا انکل لگا ہے جاپان کا جرمنی کا پھر بکتا ہے وہ, اگر وہ یہیں کا لگا دیں گے تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دے گا. تو وہی بات جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں چیز وہ ہے بنے جو یورپ. اسی طرح بات ہو جائے وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. پانیئر اس زمانے کا انگریزی اخبار تو اس کی خبروں کی تو اہمیت ہے لیکن جو اردو اخبار ہے اس میں جو بات آ جائے تو اس کا یقین نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ جو ہے یہ قابل بھروسہ ہے, کوئی بات کی گئی نہیں ہے. آپ اسے کوٹ کریں گے بھائی دور میں ہی آیا تو وہ ٹائمس میں یہ لکھا ہوا تھا. پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو وہ بات دوسروں کو بھی لگی کہ ہاں جی کچھ چیز دے کر آیا. اسی میں ایک مزید سے بھی کہا جاتا ہے غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا. غزالی رومی اب پرانے لوگ ہو گئے ہیں مسلمانوں کے لیے. اب کیا ہے محفل میں کھلا نقوہ سینسروں میں لے. اب تو جان سٹیل جان سینسر کی بات ہوگی اور یہ مل یہ دونوں فلسفی گزرے ہیں بہت بڑے, ان کی باتیں اب محفل میں ہوگی. اب غزالی اور رومی کی بات کرنے والے تو جو ہے ان کی کوئی نہیں سننے والا. تو یہ جو ہے ایک سوچ دیوالا. اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے لیکن اس پورے ذہنی اور فکری سفر کے دوران ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا اور جس سے بجا طور پر اس پورے مغرب کی اثرات قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے سوچ حقائق کو غور و فکر کا اصل مرکز ہونے کی حیثیت آتا ہے. اور خدا کے بجائے کائنات, روح کے بجائے مادہ اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی اصل موضوع بحث قرار دیا گیا. تو یہ بات جو ہے وہ اس کی وضاحت لکھتے ہیں. یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے ہر بہر صحیح ہے. آج مغرب شدید نوعیت کے الحاق اور انکار خدا کی لالت میں گرفتار ہے. چنانچہ آج مغرب میں منطقی ایجابیت جسے ہم کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم کا فلسفہ سب سے زیادہ مقبول ہے. اور اس کے علاوہ جو مدارس فکر مقبول ہیں وہ بھی سب کے سب انکار خدا اور روح و آخرت پر مبنی اور خالص مادیت کے حامی اور مبلغ. انہوں نے لسٹ کی ایک لمبی جو بھی فلسفے مغرب میں جو ہے مشہور ہیں اور لوگ جن سے متاثر ہیں, لیکن ان سب کا دوسرے لباس کیا ہے؟ وہ سب انکار خدا اور آخرت کے کو پروموٹ کرتے ہیں اور الحاد اور مادہ پرستی کے بہت بڑے مبلغ ہیں. اب اس میں سے چند دیکھ لیتے ہیں. مثلاً انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وینگر کی فلاسفی تھی دا فلاسفی آف ایزر. اسی طرح فینومینالزم, ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, نیچرلزم, ایگنوسٹیسزم, اسپیکٹسزم, ایمرجنٹ ایولیوشن, ایتھیزم, ہیومنزم, ریئلزم, پریگمیٹزم. اب یہ اتنے سارے ازم جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں, بہت ساری انہوں نے لسٹ کی ہے. بہرحال یہ سارے جو نظریات تھے یا فلسفے تھے ان سب میں آپ دیکھیں گے تو ایک بات کیا تھی وہ نیچے لکھتے ہیں. ان تمام مدارس فکر میں قدر مشترک یہ ہے کہ جو شے حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود پر یقین کرنا سراسر حماقت ہے, کیونکہ خدا, روح اور حیات, بعض الموت تینوں غیر محسوس ہیں, اس لیے ان کی ہستی پر یقین کرافی ہوتا ہے. لیکن یہ تینوں الفاظ مومن ہیں
بلکہ وہ کہتے ہیں بچے یہ تینوں الفاظ مومن ہیں، کیونکہ ان کے مصادیق یعنی ان کی مصداق خارج میں کہیں جو ہے وہ کوئی چیز موجود نہیں. تو جتنا فلسفہ آپ یورپ کا کھنگالیں گے تو وہاں کیا ہے، کھل کے انکار جو اصل میسج ہے اس کے نیچے. سرواری بھائی زیادہ اچھا میں کا زیادہ بھاری ہو رہی ہے پہلی. اچھا تو مطلب جمع ہے مساجد، مزداف ہم کہتے ہیں نا، یہ اس کے مزداف، مزداف کی جمع مساجد. مثال جیسا ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ فلسفے میں تو جو ہے کل بھی کہہ دیا گیا کہ یہ اس کا جو ہے یہ بالکل کوئی ہے نہیں. اب اگلی بحث یہ کہ یہ آخر اس طرح فلسفہ کیوں ڈیولپ ہو گیا یورپ میں، اور یورپی تہذیب جو ہے وہ اصل میں غور کیا جائے تو جو ہے عیسائی یعنی عیسائیوں کی تہذیب ہے، وہاں خدا کا بھی تصور ہے، روح کا بھی تصور ہے، آخرت کا بھی تصور ہے. تو یہ الحاد کیسے پیدا ہو؟ تو یہ اگلا نقطہ ہے اور اس پر جو ہے موٹی موٹی بس باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ثابت کیا، اگر آپ پورے آرٹیکل کو پڑھیں آپ کے پاس تو ان شاء اللہ تو آپ دیکھیے گا. لبے لباس یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بنا ہے غیر معقول، غیر منطقی اور استبدادی مذہب عیسائیت، جو اصل میں پاپائیت. اب اس کے ایسے ایسے وہ مذہب کے نام پر ایسے عقائد پیش کیے گئے جو بالکل لاجیکل تھے اور عقل کے خلاف تھے، لیکن دعویٰ کیا مانو اور زبردستی کی گئی. اور جو کچھ ترقی ہوئی سائنس نے جب ترقی کی مطلب، اور یہ ڈسکور کیا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، اور جو ہے اس طرح کے معاملات جب آئے سامنے تو وہ ان کی کرسچن یا پاپائیت کی تعلیمات کے خلاف جاتا، کیونکہ وہاں ہے کہ زمین چلتی ہے اور اس کے کنارے پہ اگر پہنچ گیا تو گرنے کا خطرہ، اس طرح کی باتیں. تو یہ خلاف اصل جو عقائد تھے ان سے جو ہے وہ سائنس کا تصادم شروع ہوا. تو اس کا علاج کیا کیا گیا؟ پاپائیت کی طرف سے سختی سے کنڈیم کیا گیا، کہہ دیا گیا کہ جو کوئی اس طرح کی بات کرے گا جو ہمارے عقائد کے خلاف ہوگا شدید ترین سزا سے بچے، اور علماء اور حکماء کو ملک بدل کر دیا گیا، اور اپنے لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ جو ان باتوں کو اس کا چرچا کرے گا وہ ملعون ہوگا، یعنی زندگی میں اچھوت مانا جائے گا اور موت کے بعد اس کے لاش کو یوں چھوڑ دیا جائے گا بے غور و کفن. تو یعنی اس طرح سختی اور ظلم کے تحت ان سے لوگوں کو روکا گیا. اس کا ایک ریئیکشن اٹھا یہ کہ انہوں نے بجائے اس کی ریئیکشن ہونا چاہیے مغرب کے خلاف، لیکن وہ یعنی پاپائیت کے خلاف، لیکن وہ ریئیکشن اتنا بڑھا کہ مذہبی کے خلاف اس نے کر رکھا گیا. اب یہ پاپائیت اصل میں تھی کیا؟ اگر لطف لباس آپ دیکھیں گے تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ بنو اسرائیل کے لیے تھی، اور اسے کوئی ایسی بات انہوں نے آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بڑے تنقید کی چوٹ پہ کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ایک ورڈ دکھا دو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ہے ہی نہیں آج کی بائبل میں نہیں، جو حالانکہ اتنے ہاتھوں سے گزر کے اور بھی اس میں جو ہے تلفات جو ہے وہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کئی چیزیں چالو کی ہیں. تو اسی طرح نہ انہوں نے کبھی اپنے خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ ہی جو ہے انہوں نے شریعت کو ثابت کرنے کی کوئی بات کی. اور وہ سرمن آف دا ماؤنٹ جو بہت مشہور سرمن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ اس پہ میتھیو، ہاں سرمن آف دا ماؤنٹ کہلاتا ہے، وہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، یہ نہیں سوچو کہ میں شریعت ثابت کرنے آیا، بلکہ وہ جو شریعت مصیبی تھی اسی پر عمل تھا. اسی طرح ان کے بارے میں یہ قول بھی بہت معروف ہے کہ میں صرف بنو اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں، یعنی ان کی ساری تعلیمات کہاں تک تھیں؟ بنو اسرائیل پوری دنیا کے لیے وہ اس طرح نہیں تھا، وہ تو ایک اور رسول آنے والے تھے، ان کی وہ جو ہے وہ ان کی بشارت دے کر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن پاپ نے کیا کیا؟ پاپ جان پال جو ہے یہ شخصیت گزری ہے، اور کیا کیا انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے تو شدید ترین مخالف تھا، اور جب جو ہے رفع آسمانی ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر اس نے لوگ بچایا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاپ میں ہیں اور اب میں اس کا قائل ہو گیا ہوں، اور پھر اس نے آ کر جو ہے وہ عیسائیت کی تبلیغ شروع کی. لیکن اس نے ایک بہت بڑی دیر جو ہے وہ عیسائیت میں پیدا کری. پہلی یہ کہ توحید کو تصدیق سے بدل سکتی، पहले से इसी तरह देखेंगे जैसे तारीफ किया है। वैसे ये तो है कि रोमन जो है वो मुस्लिम थे, ईसाई नहीं थे, लेकिन 300 BC में जो है पूरे का पूरा रोमन एम्पायर जो है वो ईसाई हो गया। इससे पहले शदीद तरीन मुजालिम होते थे ईसाइयों के ऊपर रोमन की तरफ, लेकिन बाद में क्योंकि वो खुद ईसाई हो गए तो जो है वो ईसाइयों को बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल हुई और यहूदियों को ये शुरू में हो गई थी गर्दन। बहरहाल अब उसने किया क्या, पहली चीज उसने ये की कि तौहीद को तस्दीक से बदला। पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या थी, तौहीद पर मबनी थी, क्योंकि उसने आगे कहा नहीं खुदा तीन है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, और वो कहा ये तीन नहीं है एक है। तो ये अजीब गोरख ढंग है, तीन में से एक और एक में तीन का जो अल्लाह मतलब के सही चला। तो पहला उसने ये काम किया तौहीद को तस्दीक से बदला। दूसरी चीज देखी कि शरीयत को साबित कर, उसने कहा कोई जरूरी नहीं है कि अमल किया जाए, शरीयत है नहीं बस इस्लामी तालीमात को उसने रखा। तीसरा ये किया कि इनका नेशन का अकीदा जो है वो उसने वजह किया, गौर इनका नेशन होता कि खुदा जो है वो इंसानी शक्ल में आ जाए, और इसी तरह ओरिजिनल सिन और जो है वो उसका अकीदा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुफारी का अकीदा ओरिजिनल सिन, जानते हैं आप ओरिजिनल सिन, यह अकीदा दिया गया कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर गुनाहगार है, और गुनाह क्या है कि उनके आबा औलाद से हुआ, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कि उन्होंने जन्नत का फल खा लिया, तो गोया हर इंसान गुनाहगार पैदा हुआ। और यह अकीदा लेकर आया कि अब जो है इंसानों के गुनाहों का कुफारा बन गए माज़ अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और उस लेप पर चढ़कर उन्होंने तमाम इंसानों के सारे गुनाहों का जो है कुफारा दे दिया। अब सिर्फ क्या काम है, अब सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लो और तुम्हारी निजात हो जाए। ये अब अकीदा, ये सारी गड़बड़ किसने की, ये पॉल ने आके। और इसी तरह जो है एक और उसने जो है कदम आगे बढ़ाया और जेंटाइल्स और गोयल से भी तब्दील का आगाज कर, हालांकि वो बात आ चुकी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात सिर्फ बनी इसराइल के लिए, इसने कहा कि नहीं जी ये आदमी तब्दील कर और जो है निजात दहंदा जो है बनना इंसानियत का, इंसानियत की निजात किसमें कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लें तो वह कामयाब हो जाएगी सारी इंसान। चुनाचे यहाँ से जो है वो इसका ये तब्दील शुरू होगी ईसाइत की पूरी दुनिया में। तो ये तब्दीलियाँ जो पॉप लेकर आया, और इसके साथ साथ जो है ये तो आप मजीद देखेंगे कि इसके असरात क्या हुए। तो पहला ये कि जैसे बात आई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे तो यहूदी बहुत बिगड़ गए थे, उनकी इत्तला की कोशिश थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उन्होंने जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उनके बड़े बड़े जो मौजाद थे उन्हें कहा ये जादू है, और जादू क्योंकि शरीयत में शरीयत मुस्लिम में भी हराम था तो कहा ये हराम काम हुआ, गुनाह हो गया, मुर्तद हो गए, मुर्तद की सजा क्या है कतल। चुनाचे उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी इनके ऊपर, उनके गवर्नर होते थे, उन्हें कहा कि जो है ये हमारे मजहबी लिहाज से जो है फासले सजा है और उन्हें सजा दिया। तो ये मामला जो है हमें मालूम है, और इब्तदा में जो है रोमन जो है वो मुशरिक थे, चुनाचे इनके ऊपर जुल्म होता रहा, लेकिन 300 BC में वो सब ईसाई हो गए और ये पूरा बहुत बड़े एरिया पर ईसाइयों का जो है कब्जा हो गया। उसके बाद इन्होंने जो चंद काम किए वो ये कि पहला काम ये कि जितना भी फलसफा और हिकमत की तालीमात थी, असल में जो मुसलमानों का दौर था वो बनु उमैया का, आपको पता है कि दौर कब शुरू हुआ है, तकरीबन 607 BC थी। तो 300 BC में तो ये जो है पूरा एरिया जो है ग्लोबलाइज हो गया और वो ईसाई या बाबाइत की तालीमात पर अमल होने लगा। फिर हमें पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, खुद पर राजदीन का दौर आया, बनु उमैया का दौर आया, इस दौरान ये पूरा यूरोप डार्क एजेस में था, इनके यहाँ तालीम कुछ नहीं थी और कोई इखलाकियात नहीं थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों ने तरक्की की, खसूस बनु अब्बास का दौर जो है मुसलमानों में, और ये तकरीबन 7वीं सदी की बात है बल्कि इससे आगे 8वीं सदी की बात है, तो इसमें मुसलमानों ने ये किया कि पूरी दुनिया से जो इल्म के खजाने थे उन्हें अचीवमेंट वास्ते, जो भी इन्हें मालूम हो जाता था कि फलाने मौजू पर एक बहुत ही जो है वो अच्छी किताब है तो फौरन उसे मंगवा कर जो है उसका अचीवमेंट तर्जमा किया जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, खसूस बगदाद में, वर्नाटा में, स्पेन में जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी, वहाँ जो है वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोगों को जमा किया गया, उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब शामिल हैं, और पूरी दुनिया से इल्म और फलसफा और फिक्र का जो है कॉम्पिटिशन। उसी दौरान में यूरोप में भी, क्योंकि स्पेन तक मुसलमान थे बल्कि से आगे बढ़ रहे थे, तो जर्मनी, इटली, स्पेन, यहाँ के जो यूरोपियन नौजवान थे वो फिर आए यूनिवर्सिटियों में, उन्होंने पढ़ा, वो यहाँ के इल्म से फिक्र से मुतासर हुए, फिर अपने इलाकों में गए वापस, और वहाँ उन्होंने दो तहरीकें बरपा की, एक कहलाता है आयाई उलूम की तहरीक जिन्हें रेनाइसेंस कहते हैं, और एक जो है वो मजहब की दुरुस्तगी की तहरीक जिसे रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो वहाँ से फिर यूरोप में शहूर शुरू हुआ, लेकिन इब्तिदा में बहुत बड़ा जो है इनका मुकाबला हुआ है अहले मजहब से, यानी ईसाई जो पादरी थे, कलीसा जो था, उससे शदीद मुकाबला किया नौजवानों का, इन्हें कत्ल किया गया, इनके घरों को बर्बाद किया गया, इन्हें शदीद सजाएं दी गई, और वहाँ से ये साइंस और मजहब में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। अब इसकी मोटी मोटी चीज़ें जो की गई वो आप सुनने, ये लिखते हैं कि जब जस्टिनियन कैसर रोम ने देखा कि हुक्माए यूनान नसरानियत के खिलाफ या फिर हकायक पर फलसफियाना एतराजात करते रहते हैं, तो इससे तंग आकर 529 में अपने कलमरू में फलसफा और हिकमत की तालीम को ममनू करा दे और तमाम फलासफा और हुक्मा को जिला वतन कर, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस के खिलाफ है, अकल के खिलाफ है, तो जब ये तालीम याफ्ता लोग आके उनसे तनकीद करने लगे तो उनके लिए मुश्किल हो गया उसका जवाब, तो यहाँ की पहली इसमें पाबंदी लगा दी। दूसरा फिर क्या किया कि जो लोग अब इस तालीमत से मुतासर थे तो कहा गया कि उन्हें जो है कलीसिया से खारिज कर दिया गया, और कहा कि वो मलौन करार दिए जाए, उन्हें मलौन करार दिया जाएगा, यानी जीते जी असूर और बाद वफात इनका लाचा बेगोर व कफन छोड़ दिया जाए। नंबर तीन, इसी बात ये की गई कि कलीसिया रोम के खिलाफ अकल हकायक के साथ हस्ते जैन अहकाम वाजिब उल अदान भी नाफिज कर दिए गए। अब ये अपनी जो खिलाफ अकल एक मजहबी अकायद से उसका तहफ़ किस तरह किया गया, नंबर एक कहा गया कि मेयार हक को बातिल बाइबल नहीं बल्कि कलीसिया है। अब क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो बाइबल में नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि जो पादरी बताएगा, कलीसिया कहते हैं पॉप और उसके जेर असर जितने भी पादरियों की और चीन है वो सब मिलकर कलीसिया कहला। तो कहा कि मेयार हक जो है वो बाइबल नहीं है, कलीसिया है, जो पादरी कहेगा वो असल चीज़। दूसरा क्या किया गया, वो कहा गया कि पॉप और ये कलीसिया से मुतालिक जो लोग हैं ये सब मासूम अनफता है, इनसे गलती का कोई सदूर मुमकिन नहीं, इनफेमेबिलिटी जो कहलाता है अंग्रेजी इनफेमेबल है, इससे गलती होनी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ये शिकल आप देख सकते हैं। इसी तरह मजहब और मजहबी अकायद में अकल को कोई दखल नहीं, ये ऐलान कर दिया है, ईसाई रहना है तो फिर जो है अकल तोड़ कर आओ, जो आप कह रहे हो मानो सही हो या गलत। इसी तरह कहा गया कि कलीसाई रिवायात का इनकार भी कुफर है, यानी जो पॉप जो हुक्म दे रहा है या जो अहले मजहब मजहबी रहनुमाई कोई बात कर रहे हैं उसे ना मानना भी कुफर है। और नंबर पाँच, पॉप और कलीसा को गुनाह माफ करने का इख्तियार हासिल है। अब गुनाह माफ कौन करेगा, वो कलीसा करेगा, अब वो खुदा को गोया बीच से हटा दिया गया या खुद बीच में आ गया, इसलिए अलामा इकबाल ने बड़ा मशहूर वो कह रहा है क्यों हाइल रहे खालिक व मखलूक में पर्दे, ईरान कलीसा को कलीसा से उठा, तो ये खुद बैठ गया कि भाई तुम कैसे माफ़ी मांग सकते हो खुदा से, तुम हमारे पास आओ हमें बताओ क्या गुनाह हुआ है, हम अल्लाह से तुम्हारे लिए माफ़ी मांगेंगे और बताएंगे। आदमी होता है वो पॉप के पास जाके या पादरी के पास जाके अपना गुनाह बताया जाता है, वो कुछ टीस देता है या नजराना लेता है, फिर एक सर्टिफिकेट लिख कर दे देता है कि जाओ तुम्हारा गुनाह माफ हो गया है, सर्टिफिकेट आए। तो ये जो है ये सारे काम हुए, और आप देख सकते हैं कि ये खिलाफ अकल मंतव और ये जोर ज़बरदस्ती से दबाया गया कई बार। इसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों के अंदर मजहब बेदारी पैदा हो, खसूस नौजवानों से, उन्होंने देखा कि ये हमारी मजहबी रहनुमा ये तो अजीब बातें कर रहे हैं जो अकल के खिलाफ है, हकायक के खिलाफ है। लेकिन बात ये थी कि ये मुखालफत रहनी चाहिए थी ईसाइत पर, लेकिन ये इतनी बड़ी कि मजहबी के खिलाफ हो, तो उसमें यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि जड़ें जो है वो साइंस और मजहब की दुश्मनी की उसकी शुरुआत है। शुरू करने वाले कौन थे, वो यही जो है कलीसिया था या पापाइया था जो मजबूर करता था लोगों को गलत अकायद को अख्तियार करना। अब भाई यहाँ से हम अपनी दोबारा आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें मालूम हो गया कि किस तरह ये सारा मामला हुआ, क्यों इंसान ने फिर आगे बढ़कर खुदा का रूह का असर का इनकार किया। अच्छा जनाब, अगला पैराग्राफ है पेज नंबर 36 या पेज नंबर 6 जिनके पास किताब से है। आगे देखते हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने जिन बीत पना कुव्वतों और सलाहियतों से नवाजा है वो इन्हें जिस मैदान में भी इस्तेमाल करें नतज बहरहाल रोनुमा होते हैं, और हर ढूंढने वाला अपने दायरे तहकीक को जस्तजू में नई दुनियाएं तराश कर सकता है। अब इंसान को अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियतें दी, उन सलाहियतों को जहाँ पर भी लगाते हैं बहुत कुछ हासिल कर देते हैं। अब यहाँ जो है वही उसका मजीद अब वजाहत हो रही है, गोया ये दूसरा नुकता ये बयान हो रहा है। ये भी हकीकत है कि जिस तरह कायनात की अजमत और वसत के अखबार से महरे दरख्शा की हैसियत और ऊपर एक गर्रे पानी से ज़्यादा नज़र नहीं आती, लेकिन अगर एक गर्रे पानी की हकीकत और माहियत पर गौर किया जाए तो वो बजाय खुद महरे दरख्शा की अजमत और सतबत का हामिल नज़र आता है। सतबत कहते हैं शान चौकत रोब व दबदबा, महरे दरख्शा किसे कहा जाए, सूरज कहा जा रहा है कि एक तो इंसानियत इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें दी, दूसरी बात ये बताई जा रही है कि इस कायनात में जो कुछ नज़र आ रहा है इसके अंदर भी बहुत बड़ी जो है वो अजीम चीज़ें पोशीदा हैं। और एक सूरज को देखें तो सूरज को जब पूरी कायनात के तनाजुर में देखा जाता है तो क्या महसूस होता है, एक जर्रे से ज़्यादा उसकी हैसियत नज़र नहीं आती, लेकिन एक जर्रे पर अपनी इंसानी तवज्जो को फोकस कर लें तो वो एक बहुत बड़ी कायनात। अब अगर आप देखेंगे पूरी कायनात, तो हमने समझा था कि कम से कम 200 बिलियन गैलेक्सीज का आ गया, एक गैलेक्सी के अंदर कितने सूरज होते हैं, 200 बिलियन स्टार जो कहते हैं कि वो तो ये छोटी से छोटी गैलेक्सी, तो उन 200 बिलियन स्टार में से एक सूरज है। तो गोया जब पूरी कायनात में एक सूरज को देखा जाए तो वो जो एक जर्रे के बराबर भी उसकी हैसियत थी। बात हमें पता है कि बाद स्टार ऐसे हैं कि कई ट्रिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है हमें पता चलता है कि ये भी स्टार मौजूद है, और पता चलता है इसने जो है खरबों सालों से इसकी रोशनी आ रही थी आज ज़मीन पर पहुंची है, तो ये इतनी अजीम कायनात। लेकिन एक जर्रे को देख लें, एक छोटे से एटम को देख लें तो फिर क्या नज़र आता है, वो भी एक पूरी कायनात, उसका एक मरकज है, इसमें जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉन से जो गजित करें तो पूरी कायनात जो है वो इस जर्रे के अंदर मौजूद। ये बात बताई जा रही है कि इंसान को भी तुम्हारे अल्लाह ने सलाहियतें नहीं, इस कायनात में अजीम और शान जो है वो मामला अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। और इसका नतीजा क्या निकला, जैसे नीचे कौशन न्याजी मैंने उनका शेर लिखा हुआ है, महरे दरख्शा जर्रे पानी महरे दरख्शा, तो महरे दरख्शा इतना बड़ा सूरज जो है उसकी हैसियत क्या है, जर्रे पानी की, और जर्रे पानी पर गौर किया जाए तो वो क्या है, वो पूरा पूरा सूरज है, उसके अंदर वही कुवत है जो सूरज के अंदर होती है। और ये एटॉमिक एनर्जी कहाँ से आई, जर्रे से निकली है ना, और जर्रे को ये जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम का, न्यूट्रॉन को अलहदा करते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो पहाड़ों को हिला देती है, जो हमने देखा है कि न्यूक्लियर पावर निकल आई एक जर्रे के अंदर से। तो अल्लामा इक़बाल ने बहुत कुछ कहा, लव खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का जी चीरे, जर्रे का दिल चीरे, तो वही जर्रे को चीरे आप तो एटॉमिक एनर्जी निकलती है जो सूरज की तरह जो है वो भरपूर एनर्जी का रूल हो। अब ये दो चीज़ें बताई गई, इंसान व सलाहियत है, ये पूरी कायनात जो है इसकी बड़ी वसत है, बड़ी शानदार है, इसके अंदर बहुत कुछ है इंसान के लिए। अब इसका नतीजा क्या, तीसरी बात बताई जा रही है, इसी तरह हकीकत नफ्सुल अमरा के एतबार से चाहे खुदा के मुकाबले में कायनात, रूह के मुकाबले में मादा, और हयात उखरवी के मुकाबले में हयात दुनियावी कैसे ही हकीक और कितनी ही बेवकूफ़ क्यों ना हो, अगर निगाहों को इन्हीं पर महफूज कर दिया जाए तो खुद इनकी वसतें बेकरार और गहराइयां अच्छा नजर आती। क्या मतलब हुआ, हकीकत नफ्सुल अमरा का मतलब क्या होता है, इस मामले की तह की हकीकत, इस मामले की हकीकत, इस मामले की जान क्या है, वो ये कहा जा रहा है कि अगर जी तो कोई कंपेरिजन नहीं, खुदा के मुकाबले में कायनात की कोई अहमियत नहीं है, रूह के मुकाबले में जिस्म की कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह उखरवी जिंदगी जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसके मुकाबले में इस दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब इन्हीं चीजों पर गौर किया जाए, इस कायनात पर, इस जिस्म पर, इस दुनियावी जिंदगी पर, तो इसके अंदर बहुत कुछ है और वो महसूस होता है। और इंसान जो है वो पूरी पूरी जिंदगियां लगा दे और सारी सारी सलाहियतें खपा दे, फिर भी जो है इसकी जो हकीकतें वो पूरी तरह नहीं खुलती। तो इसलिए सारी तवज्जा बहरहाल कहाँ होगी, वो इन चीज़ों के ऊपर होगी। और उसका इन अब यहाँ चार पॉइंट जो है इनका नतीजा ही निकल रहा है। पहला पॉइंट ये था कि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खसूसियात दी हैं, बहुत सलाहियतें दी, और वो जहाँ पर भी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा उनके दर्जात जो है हासिल करता है। अगर ये सलाहियतें अल्लाह की मार्फत के लिए लगाएगा तो कई चीज़ें हैं जो है उसके ऊपर मार्फत की बड़ी बड़ी जो है हिकमतें खुल जाएंगी। लेकिन दुनिया में किसी चीज़ पर लगाएगा तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेगा। इसी तरह दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में हर चीज़ की एक अपनी अहमियत, एक मामूली से जमे को देखते वो एक पूरी कायनात है, और बड़ी से बड़ी चीज़ देखते तो इस अजीम कायनात में उसकी हैसियत जमे के बराबर है। तीसरी चीज़ यह आई कि अगर ये जो है अल्लाह रूह और उखरवी जिंदगी अहम तर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अपने अंदर बहुत गहराई रखती हैं, और अगर आप भी उनमें फंस जाए तो उसी में जो है उसकी सारी जिंदगी जो है वो निकल सकती है। अब इनका नतीजा क्या निकला इन इन ऑब्जर्वेशन का, वो निकल रहे हेडिंग का आखिरी पैराग्राफ। चुनाचे यूरोप में जब कायनात और मादा तहकीक और जस्तजू का मौजू बने, अब यहाँ एक चीज का जिक्र नहीं हो रहा उखरवी जिंदगी का, वो आगे आएगा क्योंकि उसका ताल्लुक फलसफे से, और यहाँ पर आ रहा है कि कायनात पर गौर व फिक्र किया, मादे पर तहकीक किया, तो फिर क्या हुआ? तो यके बाद दीगरे ऐसे ऐसे अजीम इंकशफात हुए और बज़ाहिर खिस्ता खिस्ता कहते हैं तोये हुए खिस्ता व पाबीदा बज़ाहिर कुदरत के पर्दों में ऐसी ऐसी अजीम कुवतों और तवानाइयों का सुराग मिला कि अपने दंग और निगाहें तकरजोंद होकर रह गए, और इल्म-ओ-फ़न की दुनिया में एक इंकलाब बरपा हुआ। ठीक है जनाब, जब गौर किया तो इतना कुछ इसके अंदर था कि आंखें दंग हो गई, और जो है वो बहुत कुछ जो है वो वहाँ से जो है हासिल हो रहा था इंसान को। और मजीद ये तरीका पहले से फिर से समझते हैं कि इसके माने हैं क्या। आगे कुदरत के कवानीन की मुसलसल दरिया, फितरत की कुवतों की तहम तस्वीर और नित नई ईजादात और इख्तराआत में एक तरफ यूरोप को एक नाकाबले शिकस्त कुवत बना दिया और दूसरी तरफ मादे की ये अजमत और इसकी कुवतों की ये सतवत बजाय खुद इस अमर की दलील बनती चली गई कि असल काबले इल्तफात क्या है, मादा है ना के रूह और कायनात और इसके कवायद व कवानीन है ना के खुदा और इसकी ज़ात व सिफात। तो अब अगर आप गौर करें कि ये मामला क्या बात बताई, बात ये बताई जा रही है कि जब इस कायनात पर गौर व फिक्र इंसान ने किया, यूरोपी लोगों ने किया, तो अजीम हकायक उनके सामने खड़े। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक जाहिर जैसे आदमी किसी हाई एक्सटेंशन वायर के ऊपर खड़ा हो तो उसे क्या महसूस होगा, नीचे से वो कई हजार वोल्ट की बिजली नीचे से उसके कदमों के नीचे से जारी हो, ऊपर उसे बजाए जो है वो कुछ नहीं लगेगा, हाई एक्सटेंशन वायर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो तहराओं से गुजर रहा है फर्ज करें। लेकिन जब डिस्कवर किया आदमी ने कि ये है क्या कुवत, तो उस पर खुला मिसाल इस तरह है कि कितने लोगों ने देखा होगा कि फल जो है वो टूटे और नीचे गिर रहे हैं, बहुत सारों ने देखा, लेकिन न्यूटन ने भी देखा, उसने गौर किया कि क्यों नीचे गिर रहा है, और उसने जब गौर फिक्र किया तो क्या नतीजा निकला कि ग्रेविटी है, ज़मीन की एक कुवत है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह जो है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि देखती जो है चूल्हे पर चली गई है, पानी अंदर खोल रहा है और ऊपर रखा हुआ ढकना उससे जो है वो हिल रहा है, लेकिन जब एक साइंसदान ने देखा उसने कहा नहीं पानी के अंदर कुवत है, और उस पर तजुर्बात किए, उसे कैप्चर किया और जो है वो स्टीम की एक कुवत दरियाफ्त कर ली। और इसी तरह समझाया जाता है, आप अगर गौर करेंगे कि इंसान जब जंगलों की ज़िंदगी गुजारता था और तब तक कोई उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं आते, तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट सबसे बड़ा मौजूद कौन था जिसने औजार पहले बनाए, वो औजार किसके बने हुए, पत्थरों के बने हुए औजार। इसके बाद फिर वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा जिसने फिर आग बना, आग को डिस्कवर किया। चीज़ें तो अल्लाह ने बनाई नहीं है, लेकिन उसे डिस्कवर किया इंसान, ये नहीं कि आग इंसान ने बनाई, इंसान ने तो सिर्फ पर्दा हटाया है कि ये आग की एक सहमत है जो अल्लाह ने रखी। और देखा गया कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, उससे आग जैसी दौलत निकल आई। और कितना बड़ा मस्जिद होगा वो इंसान के बाद जो है वो अब आपके इतने इस्तेमाल आते हैं जो मैं और आप करें। इसी तरह लोगों ने देखा कि हवा में एक कुवत है, हवा में एक ताकत है। और ना सिर्फ ये, अब लोगों ने क्या किया, तवज्जो इस तरफ आई दुनिया की तरफ। उन्होंने पहले तो डिस्कवर किया कि है क्या ये, और सच के डिस्कवर हो गया कि हवा में कुवत है। फिर उसके ऊपर तजुर्बात किए कि इस कुवत को कैसे हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते। चुनाचे आपको पता है कि फिर बागबानी किश्तियाँ बनी और वो बड़े बड़े टर्बाइन हैं जो अब हवा के गैस की वजह से चलते हैं, और वो जो बड़े बड़े टर्बाइन उनसे चल रहे हैं। और न्यूमैटिक एनर्जी जो है बाकायदा एक अब चीज़ है। पहले इंसान ने टायर बनाए थे, आपको पता है वो या तो लकड़ी के बनते थे या पत्थर के बनते थे। फिर वो हवा से जो है वो ये न्यूमैटिक टायर बनने लगे, इसकी वजह से कितनी अहमियत बढ़ गई। अब तो न्यूमैटिक ड्रिल्स होती हैं, ये हवा के प्रेशर से ड्रिल बनाई गई। वो बाकायदा इस हवा की कुवत को इस्तेमाल करके जो है बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है जो यहाँ बताई जा रही है। पहले डिस्कवर किया उस कुवत को, फिर उसे मुसफ़र किया, उसके ऊपर कुवत हासिल, उसे अपने जेरे दस्त किया, फिर उससे नई नई ईजादें की, अपनी ज़रूरत पूरी की और उससे नई नई चीज़ें बनाई। इसी तरह जो है वो आपको पता है कि पानी को देखा, गौर व फिक्र किया और पानी की कुवत को इस्तेमाल किया, उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई पानी से, और इसी पानी से फिर स्टीम एनर्जी जो है वो दरियाफ की लोगों ने, और उसी उस पर तजर्बात किए, उस पर जो है वो अपना अख्तियार हासिल किया। हमें पता है स्टीम इंजन बने थे, स्टीम इंजन से फिर बड़ी बड़ी जो है टनों वजनी जो है वो रेलगाड़ियाँ जो है वो चलाई गई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुवतें रखी हैं उन्हें डिस्कवर किया, उन पर तजर्बात किए, उन्हें मुसफ़र किया, उससे जो है नई नई चीज़ें बनाई, और फिर इसके ज़रिए क्या बन गया यूरोप, एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये बात जो है वो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आ गई कि असल अहमियत किन चीज़ों की है, इन चीज़ों की है, ये माजी दुनिया की है। और देखो इन पर इन्हें अहमियत देने के अब यूरोप काम पहुँच गया, इसीलिए जो है वो फौजियों पर बातें आनी शुरू हो गई हैं कि ये अभी तक इन्हीं मसाइल में पड़े हुए हैं। अल्लाह की ज़ात जो है वो ऐन ज़ात है, अल्लाह की सिफात ऐन ज़ात है या गैर ज़ात है, और ये ढेले गिनते रह गया वो लोग जो है वो चांद तक पहुँच गए। तो ये सारी बातें जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि इसके जो नतज थे वो बिल्कुल सामने। आप अगर गौर करें तो आज से 70-80 साल पहले या मजीद 10 साल बढ़ा दें, तो यहाँ के लोग मक्के के लोग जो है उनके लिए रात हो जाती थी मगरिब के साथ ही, और वो कहीं शमें जल रही हैं, कहीं जो है वो क्या कहते हैं चिराग जल रहे हैं, और पंखे का क्या, बड़े बड़े मुगल बादशाह उन्हें क्या क्या ऐसा ही था, वो लोग खड़े हुए वो पंखा चल रहे हैं। और कहाँ आप देखें कि यूरोप आया तो उसके साथ क्या तरक्की आ रही है, बटन दबाया और रोशनी, बटन दबाया पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, और मिनटों में यहाँ से जो है बरतानिया बात हो रही है, टेलीग्राफ भेजे जा रहे हैं, फोन पे बात हो रही है। तो ये तो जादू नगरी थी लोगों की, वो कहते थे ये क्या, ये तो जादुई चीज़ें जो इनके आते हैं। तो इसलिए शदीद मरूबियत जो है वो यूरोप की या मशरकी लोगों के जहन में बैठ गई, और फलसफे में तो फिर भी कुछ ना कुछ जो है मुकाबला किया गया कि नहीं ये बात सही है ये गलत है, लेकिन साइंस को बिल्कुल जो है उसके आगे सफर डाल दिया लोगों, क्योंकि उसकी इतनी खूबियाँ जो है हरेक की नज़रों के सामने थी, और उसने इतनी बड़ी ताकत जो है इसके साथ साइंस आई थी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। और साइंस के साथ जो है ये इतिहाद और डेढ़ और मगरबी फिक्र की ये जो है इतिहाद परस्ती, ये भी साथ साथ जो है मशरकी ममालिक में सराहियत मिली। अब इसमें जो है वो अलहदा नहीं किया जा सका कि ये साइंस है और ये जो है बिगाड़ है साइंस का, वो नहीं किया जा सका। और वो एज एट इज दी गई बिल्कुल इस तरह, इसमें बल्कि अल्फाज वक्त साहब ने लिखे इस तरह वही इलाही को रिसीव किया जाता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसी तरह साइंस को रिसीव किया गया कि ये बस हर खता से हर गलती से मुकर है। आज के दौर में अलहमदिल्ला इंसान वहाँ तक पहुँचा है कि अब वो आगे की ठीक करता है कि नहीं ये चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन ये जब नई नई साइंस आई थी तो लोग बहुत ज़्यादा मरूम थे, उनके पास कहने के लिए कोई चीज़ नहीं। तो आज सर इस पैराग्राफ को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। चुनाचे यूरोप में जब कायनात और मादा तहकीक और जस्तजू का मौजू बने, तो यज्ञ बात नीचे ऐसे ऐसे इंतकफात हुए और बज़ाह फ़िफ़्ता और फ़ाबीदा मज़ाहिर क़ुदरत के पर्दों में ऐसी ऐसी अजीम क़ुव्वतों और तवानाइयों का सुराग मिला कि अपने दम और निगाहें तक टोन होकर है। अब गौर करें आग भाव बिजली और यहाँ तक के न्यूक्लियर एनर्जी तक जो है इन्हीं आम चीजों से जो है लोगों ने आगे कुदरत के कवानीन की मुसलसल जरिया फितरत की कुवतों की तहम तस्वीर और नित नई ऐजादात और इख्तराहात यहाँ चीजें क्या रही है। पहले क्या हुआ, कुदरत के कवानीन के मुसलसल जरिया पहले उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, जहाँ ढलान होगी पानी उधर चला जाएगा, हवा का अपना जोर है अपनी ताकत है। इसी तरह उन्होंने दरियाफ्त किया कि कुछ चीज़ों के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी मौजूद है या पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटी भी एक कुवत है। यहाँ तक कि अब तो हमें पता है सोलर एनर्जी भी दरियाफ्त हुई। अब धूप तो हर इंसान को पड़ी लेकिन इसी पर तहकीक की गई और देखा गया इसे इस्तेमाल किया गया सोलर एनर्जी हासिल हुई। अब ये एक बहुत बड़ा जरिया है, वो कुछ बड़ी मशीनें चल जाती हैं और बहुत सारे गैजेट्स हमने बना लिए जो सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। तो गोया ये जो है वो पौदीदा चीज़ें थी लेकिन इन्हीं से जो है उन्होंने एक जादू नगरी तैयार करके दिखा दी। तो बजाय उसका पौदीदा मजाय कुदरत के पैदों में ऐसी ऐसी अजीम कुवतों और तबाहियों का सुराग मिला कि अपने दल और निगाहें से कचौंध होकर रह गए और इल्म व फन की दुनिया में एक इनकलाब बरपा हो। अब देख सकते हैं कहाँ वो घोड़े के ऊपर हफ्तों लग रहे थे जाने में और कहाँ मोटर गाड़ियाँ उस वक्त जो है वो बरतानिया में इधर से उधर जा रही हैं और रेलवे का पूरा निज़ाम है और फिर जहाज जो है वो बन रहा है और लोग हो रहे। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि एक मशरिकी आदमी का क्या एहसास होगा, वो देख रहे हैं कि मगरबी लोग जहाज में बैठे हुए उसके दर के ऊपर से उठते हुए जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो जो है गधा गाड़ी पर या घोड़ा गाड़ी पर बैठा हुआ टिक टिक करके जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस उसे नज़र आया उसने बहुत मरूज किया इंसान। कुदरत के कवानीन की मुसलसल दरियाफ़ फितरत की कुवतों की तहम तस्वीर यानी एक तो वो कुवतें डिस्कवर की गई फिर उन्हें जो डिस्कवर नहीं किया उन्हें मुसफ़र किया उन पर कुवत हासिल की मगरबी लोगों और फिर नित नई ऐजादात फिर नए नए जो है गैजेट बनाए और फिर उनमें इख्तराआत उसमें मजीद डेवलप किया। पहले आपको पता है एक अजीब सी गाड़ी बनी थी अब उसकी क्या हालत हो गई कितना रिफाइन कर लिया। तो ये इख्तराआत चला ऐजाद कोई नई चीज़ बनाना तो उसे डेवलप करके जो है उसे मजीद बेहतर करना इख्तराआत। अब इन सारी चीज़ों ने क्या किया, एक तरफ तो यूरोप को एक नाकाबले शिकस्त कुवत बना दी, इतनी बड़ी फौजी ताकत बन के वो सामने आई कि वो नाकाबले शिकस्त थी। यहाँ लोग तलवारें इस्तेमाल कर रहे थे और ब्रिटिश पर अपने साथ क्या लेकर आए थे पता है, हौसला बारूद लेकर आए थे, बड़ी बड़े वेपन थे, तोपें थी, बंदूकें थी और उससे वो लड़ रहे थे। हालांकि हम ये अब्बासी दौर में ये बारूद बना था और तोपें बनी थी लेकिन हमने जो है इतनी तवज्जो नहीं दी और जगह। इसी तरह फिर हुआ क्या, दूसरी तरफ मादे की असमत और इसकी कुवतों की ये तस्वत यानी शान शौकत बजाय खुद इस समय की दलील बनती चली गई कि असल काबले इस्तेफाद शहर मादा है ना कि रूह। अब लोगों ने देखा कि इन्होंने इन चीज़ों पर तवज्जो दी तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचे, तो हमें भी इन पर तवज्जो देनी चाहिए। तो वो ये जो है आपस में बहस शुरू होगी और मजहब जो है गोया सच्चाई में चला गया और असल अहमियत इन चीज़ों की हो गई कायनात वगैरह। अब इस पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक टाइम लाइन आपके सामने रखूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी तेज़ी से चीज़ें ईजाद हो रही थी और हम लोग कहाँ खड़े थे। 1712 स्टीम इंजन बनाया जा चुका था, 1712 1759 लाइट हाउस ये जो बंदरगाह पे बड़े बड़े टावर जिन पर बड़े बल्ब चलते रहते हैं ताकि दूर से जहाज को मालूम हो जाए कि यहाँ पर जो है कोई ठिकान है या यहाँ पर जो है कुश्ती है। इसी तरह 1775 सबमरीन बना ली थी, जब समंदर के अंदर चलने वाला जहाज हम लोग ऊपर की किश्तियाँ ही जो है वो भी बागवानी किश्तियाँ तक महदूद। 1779 आयरन ब्रिज दरियाओं के ऊपर पुल जो है लोहे के पुल तामीर होने लगे। 1783 हॉट एयर बलून ये जो गुब्बारे की तरह होता है हवा में उड़ता है ये 1783 में। इसी तरह पैराशूट ये 1783 में बन गया। लूम पावर लूम जो है 1785 में बन गए। पावर लूम जिन पर कपड़ा बुना जाता है उस वक्त हमारे यहाँ क्या थे खाद से चलाने वाली खटियाँ होती और वो पावर लूम आज भी है लेकिन पावर लूम बना दिए तो 1785 में। इसी तरह 1786 स्टीम बोट 1792 गैस लाइटनिंग, गैस के जरिए लाइट।
फिर 1793 कॉटन जिन, एक मशीन की जो कपास और जो है बीज को अलहदा अलहदा करती। फिर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है 1796 में। 1814 के अंदर रेलवे का निज़ाम डेवलप हो गया था 1814 में। 1819 स्टेटस को डॉक्टर्स का जो मेन आला है डॉक्टर वगैरह से नहीं। फिर 1824 सीमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। 1825 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिस्कवर हो गई। 1827 फिक्शन मैच, ये जो माचिस है जो हम यूज कर रहे हैं। फिर 1830 सिलाई मशीन आ गई, हमारे यहाँ हाथ से सिया जाता था ये सुई और धागे से। और इसी तरह 1834 रेफ्रिजरेटर आ गए थे फ्रिज 1834 में। 1837 टेलीग्राफ जो है ये शुरू हो गया। 1839 बाईसाइकिल आ गई थी, साइकिल जो है वो बना दी गई। बहुत सारी है, मैं खास कर बता रहा हूँ, पूरी लिस्ट है बना मेरे पास। 1843 फैक्स मशीन जो है वो बना ली गई। 1853 लिफ्ट या एलिवेटर, एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए। 1861 न्यूमेटिक ड्रिल, ड्रिल मशीन, वो भी जो है हवा की ताकत से। 1866 टॉर्पीडो, यानी बहरी जहाज़ों के अंदर वो जो जहाज से जहाज को मार करने के लिए टॉर्पीडो होते हैं। 1866 डायनामाइट। और 1869 वैक्यूम क्लीनर, जो दारू का एक जरिया होता है वो बन गया था 1869। 1873 टाइपराइटर। 1876 टेलीफोन। 1877 माइक्रोफोन। 1878 इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब, पहले था गैस का, और 1881 में जो है वो 1878 में इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब जो है वो आ गए। फिर 1881 इलेक्ट्रिकल रेलवे, रेलगाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक से चलाने लगे थे ब्रिटानिया में, जर्मनी में सर। और जनाब फिर 1885 मोटर बाईसाइकिल आ गई, साइकिल तो थी मोटरसाइकिल जो हम कहते हैं। फिर 1885 में मोटर कार। 1885 में पेट्रोल पंप। 1887 इलेक्ट्रिक हीटर। 1889 फोटोग्राफिक फिल्म, तस्वीरें उतारी जाने लगी। 1891 इलेक्ट्रिक ओवन। 1892 डीजल इंजन बन गया था। 1895 रेडियो। 1895 में ही एक्सरे। इसी तरह टेप रिकॉर्डर 1898 में आ गया था। एस्पेन 1899 में जो है वो दरिया हुई। 1901 में वैक्यूम क्लीनर नहीं बल्कि एयरप्लेन। 1903 1903 में जहाज आ गए थे। फैक्स करते होंगे ना, टेलीग्राफ
फैक्स अलग है, टेलीफोन अलग है,
मुझे पता नहीं है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, कुछ होगा। असल में ये उन्होंने क्या फोटो, इसी तरह 1707 हेलीकॉप्टर। 1912 स्टेनलेस स्टील। 1914 ट्रैफिक लाइट। 1915 मिलिट्री टैंक। 1915 मोटर स्कूटर। 2 पीरियड नवी फाइट है मेरे पास, 3 पीरियड है, चैलेंजेस बहुत होगी। टोस्टर आ गया था 1919। टेलीविजन आया 1923। जेट इंजन जो जहाज़ों में लगता है 1930। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये आ गया था जनाब 1935। बॉल पॉइंट पेन 1938। ये मुझे आपसे कोई फीडबैक नहीं लेना, बस आपको एक अंदाज़ा हो जाए कितनी तरक्की हुई है। 1938 फोटो कॉपियर, जीरोक्स मशीन। 1944 ईयर टू ईयर मेजर। 1947 पोलराइड कैमरा। 1948 ट्रांजिस्टर। 1950 क्रेडिट कार्ड।
1950 हमारे यहाँ 2000 में है या लेट 90s में 1956 हार्वर्ड क्रॉस 1980 कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये बस एक आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी तेज़ी से तरक्की की है यूरोप। ये तरक्की क्यों हुई, क्यों इतनी सारी डिस्कवरीज हो गई, उन्होंने अपना पूरी तवज्जा उन दुनिया पर रखी, यहाँ पर यहाँ के कवानीन को समझा, यहाँ की बड़ी बड़ी एनर्जीज को डिस्कवर किया, उन पर कुव्वत हासिल की, तजर्बे करते रहे, नए नए गैजेट्स बनाए और इतनी बड़ी कुव्वत बनकर खड़े हो गए। इसलिए पूरी इस्लामिक वर्ल्ड जो है से मरूब हो गया है इतनी बड़ी जो है डिस्कवरी। हाँ फला में मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी नहीं होगा कुछ ऐसे 69 में चांद पे पहुंच गए थे 1969 में, उससे पहले ही से कोशिश हो गई शुरू हो गई से ही होगी जी हाँ। अच्छा जैसे फिर 1969 में जो है वो पहले 68-69 में पहला आलू था। तो बहरहाल बात ये है कि ये इतनी बड़ी जो इनकी, तो इसलिए जब यूरोप आया हमारे ऊपर तो दो तरह की मरूबियत हमें, एक तो फौजी मरूबियत थी उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी, दूसरी ये इल्मी मरूबियत थी, इतना इल्म इनके पास था, इतनी गैजेट थे, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि आलम इस्लाम खसूसन जो है वो पूरा मरूब हो गया है सारी टेक्नोलॉजी। और फिर इंशाल्लाह आइंदा पढ़ेंगे कि इसके नतीजे में अब इस तहजीब से मुकाबला था शुरू में, तो उसका मुकाबला किस तरह किया जा रहा है वो इंशाल्लाह हम समझेंगे। दो उसके मेन ग्रुप बने, एक जो है तहरीके देवबंद और एक तहरीके अलीगढ़, इंशाल्लाह वो आइंदा पढ़ेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका।